प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। सच्ची भविष्यवाणियाँ यानी ऐसी भविष्यवाणियाँ जो पूरी हो जाती हैं, परमेश्वर के सच्चे भविष्यद्वक्ता की पहचान है। यशाया जो स्वयं एक प्रसिद्ध भविष्यद्वक्ता था अनेकों सटीक स्पष्ट और आश्चर्यजनक भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो उसने की है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की भविष्यवाणियां जो उसने की थी वो आज पूरी हो चुकी हैं। तो आइए श्रोताओ कार्यक्रम सत्य वचन के अंतर्गत अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित होते हैं और सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम अपने अध्ययन में पुराने नियम की पुस्तक में से यशाया नबी की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। आज जब हम यशाया नबी के पुस्तक में से अध्ययन को आरंभ करते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि इस अध्ययन में आप हमारे साथ हो, हमारे सहायक हो, अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की आप सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम पुराने नियम से यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। पुराने नियम में यशाया की पुस्तक से आरंभ करके पुराने नियम के अंत तक जो धर्मशास्त्र का भाग है वह भविष्यद्वाणियों का भाग कहलाता है। आप इसका अर्थ यह न समझें कि भविष्यद्वाणी का आरंभ इसराइल के इतिहास में यशाया भविष्यद्वक्ता से आरंभ हुआ था। भविष्यद्वाणियां तो पंच ग्रंथ में थी जिसे हम मूसा की पांच पुस्तक भी कहते हैं। यद्यपि भविष्यद्वाणियां इस भाग में सबसे अधिक हैं, भविष्यद्वक्ता भावी कहने वालों से कहीं अधिक थे। ये लोग परमेश्वर द्वारा बुलाए गए थे और उस युग में सेवा करते थे जब न तो याजक और न ही राजा परमेश्वर के वचन के योग्य संदेशवाहक थे। भविष्यद्वाणियों की ये पुस्तकें इतिहास, कविता और व्यवस्था का प्रकाशन भी हैं, परंतु इनका मुख्य संदेश भविष्यद्वाणी है। यशाया से मलाकी की पुस्तकों में प्रत्येक पुस्तक का लेखक परमेश्वर का संदेशवाहक अर्थात भविष्यद्वक्ता है। आज हमने इन पुस्तकों को विभाजित करके बड़े भविष्यद्वक्ता और छोटे भविष्यद्वक्ता के रूप में नाम दिया है। जहां तक मेरा अपना विचार है, प्रत्येक भविष्यद्वक्ता बड़ा है, उनमें कोई भी छोटा भविष्यद्वक्ता नहीं है। विभाजन का मुख्य आधार है पुस्तक की लंबाई, न कि उसकी विषय वस्तु। कुछ छोटे भविष्यद्वक्ताओं का संदेश ऐसा प्रभावी था कि आप उन्हें परमाणु बम कह सकते हैं। ये भविष्यद्वक्ता दूरस्थ भविष्य की बातें ही नहीं, परंतु वे स्थानीय घटनाओं का भी उल्लेख करते थे जो अति निकट भविष्य में होने वाली थी। उन्हें मूसा की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता होने के लिए ऐसी दो मुखी भविष्यद्वाणी करना आवश्यक थी। याजक, राजा और भविष्यद्वक्ता के लिए विधि संहिता व्यवस्था विवरण की पुस्तक में व्यक्त हैं। भविष्यद्वक्ता संबंधित विधि संहिता पर ध्यान दे, जैसा हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 से 22 पद में, जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे जो वचन यहोवा ने कही नहीं, उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे तब यदि वह वचन न घट और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान में हो करके कही है, तू उससे भय न रखना। यदि भविष्यद्वक्ता के वचनों के अनुसार घटनाएं न घटे तो वह झूठा है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। अतः आप निश्चित जाने कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं का संदेश प्रेरित वचन में नहीं है। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें उन घटनाओं से भी भरी हुई हैं जो स्थानीय परिस्थितियों से या परिस्थितियों में पूरी हो चुकी हैं। यदि आप यशाया के युग में होते तो आप कैसे जानते कि वह सच्चा भविष्यद्वक्ता है? आप उसके स्थानीय भविष्यद्वाणियों को परख कर देख सकते थे। उसने दूरस्थ भविष्यद्वाणियों जैसे प्रभु यीशु का पहला और दूसरा आगमन ही नहीं, परंतु उसने निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी उल्लेख किया था। यदि उसकी स्थानीय भविष्यद्वाणियां सही नहीं होती तो उसे झूठा भविष्यद्वक्ता कहकर पत्थरवाह किया गया होता। मेरे मित्रों, भविष्यद्वाणी की पुस्तकें स्थानीय भविष्यद्वाणियों से भरी हुई हैं जो पूरी हो चुकी हैं। सब भविष्यद्वक्ताओं ने स्थानीय भविष्यद्वाणियां की थी कि अपनी सत्यता को सिद्ध करें। स्मरण रखें कि पूरी हो चुकी और अभी पूरी होना शेष है। इन दोनों भविष्यद्वाणियों में स्पष्ट अंतर देखना होगा। निसंदेह भविष्यद्वाणी की घोषणा के समय भविष्यद्वाणियां पूरी नहीं हुई थी, परंतु कालांतर में अधिकांश भविष्यद्वाणियां पूरी हो चुकी हैं। एक सबसे बड़ा प्रमाण कि ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का संदेश सुना रहे थे और यह है कि उनकी सैकड़ों भविष्यद्वाणियां एक एक शब्द पूरी हो चुकी हैं। मनुष्य भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता है। मौसम विभाग को भी उपकरणों की सहायता से 24 घंटे के भावी मौसम के अनुमान में कठिनाई होती है। सच तो यह है कि मौसम की पूर्ण घोषणा करने वाला मौसम विशेषज्ञ इसराइल में भविष्यद्वक्ता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यौगिक सभ्यता मनुष्य को निश्चित भविष्यवाणी नहीं करने देगी, क्योंकि प्रत्येक अनिश्चित बात उसकी यथार्थता को 50% कम कर देगी। यदि सैकड़ों भविष्यवाणियां शब्दशः पूरी हो गई तो इसका अर्थ है कि भविष्यद्वक्ता सत्यनिष्ठ एवं सत्य का खोजी रहा है। भविष्यद्वाणी का पूरा होना धर्मशास्त्र की समग्र प्रेरणा का अचूक प्रमाण है। मेरे प्रियो, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं भविष्यद्वाणी करता हूं कि कल वर्षा होगी। मैं आधा सच और आधा गलत हो सकता हूं, वर्षा होगी या नहीं। अब मैं एक और कदम आगे बढ़ता हूं और कहता हूं कि सुबह 11 बजे वर्षा होगी। इससे मेरे सही होने की संभावना आधी और कम हो गई, परंतु मेरे पास अभी आधे की आधी संभावना है कि मैं सही हूं। परंतु मैं यही नहीं रुक गया। मैं कहता हूं कि 11 बजे वर्षा आरंभ होगी और 3 बजे तक रुक जाएगी। सही होने की मेरी संभावना घटकर अब आधे के आधे से 12.5% ही रह गई। अब यदि मैं इस प्रकार एक एक कदम बढ़ाकर 300 भविष्यद्वाणियां करने लगा तो मेरी भविष्यद्वाणियां कभी पूरी नहीं होंगी। मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, परंतु परमेश्वर का आत्मा ही ऐसी जानकारी सही दे सकता है। मनुष्य तो कितनी बार सही नहीं हो सकता। यीशु के पहले आगमन की 300 भविष्यद्वाणियां हैं जो एक एक शब्द पूरी हुई हैं। अब प्रश्न यह है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु के पृथ्वी पर आने की इतनी अधिक भविष्यद्वाणियां क्यों दी? इसका तार्किक और प्रत्यक्ष उत्तर है, प्रभु यीशु का पृथ्वी पर आना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इसराइल के वंशज उससे चूकें। परमेश्वर ने उसके विषय इतना अधिक स्पष्ट कह दिया था कि जब वह इस पृथ्वी पर हो तो इसराइल से उसे पहचानने में भूल ना हो। मैं आपको एक घरेलू उदाहरण देता हूं। मुझे आपके शहर में बुलाया जाता है। आप मुझसे पूछेंगे कि हवाई अड्डे पर मैं आपको कैसे पहचानूंगा या रेलवे स्टेशन पर मैं आपको कैसे पहचानूंगा। मैं आपको लिख करके बताऊंगा कि मैं इतने बजे इस विमान से या इस ट्रेन से आ रहा हूं। मैं हरे रंग का पेंट और नीले रंग की धारीदार कमीज पहने हुए होऊंगा और मेरे कोट का रंग नीला होगा। जिस पर आसमानी रंग का फूल लगा होगा। मेरा एक जूता काला और दूसरा जूता भूरा होगा तथा मेरे मोजे सफेद होंगे। मेरे सिर पर टोपी होगी और हाथ में तोते का पिंजरा, दूसरे हाथ में मैं जंजीर से बंधा चीता लेकर चल रहा होऊंगा। अब क्या आप हवाई अड्डे पर या स्टेशन पर मुझे खोज पाएंगे? 2010 वर्ष पूर्व जब यीशु इस संसार में आया था, तब जिनके पास पुराना नियम था वे गौशाले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके जन्म का सुसमाचार सुनने की परीक्षा में वे होते, क्योंकि उनके पास परिपूर्ण जानकारी थी। जब ज्योतिषी आए थे तब इसराइल कम से कम उनके पीछे पीछे आकर तो यीशु को देखते। ओह, उसका आना कैसा महत्वपूर्ण था और परमेश्वर ने उसके आगमन का कैसा स्पष्ट संकेत दिया हुआ था। मेरे मित्रों, भविष्यद्वक्ता राष्ट्रवादी थे। उन्होंने ऊंचे स्थान और नीचे स्थान दोनों स्थान पर पाप की भर्त्सना की थी। उन्होंने राष्ट्र को चेतावनी दी थी। उन्होंने घमंडियों से निवेदन किया कि वे दीन बने और परमेश्वर के पास लौट आएं। उनके संदेश में आग और आंसुओं का मिश्रण था। उसका संदेश दुख और विनाश का ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रभु का दिन और उसकी महिमा देखी थी। उन सबों ने अंधकार में से शुभ प्रभात को देखा था। पाप की रात में उन्होंने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु को देखा था। उन्होंने सहस्त्र वर्षीय राज को उसकी पूर्णता में आते हुए देखा। मेरे मित्रों, नए नियम में राज्य प्राप्ति की प्रशंसा से पूर्व उनके संदेश का अर्थ जानना चाहिए। राज्य का उचित दृष्टिकोण पाने के लिए पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की आंखों में देखना आवश्यक है। भविष्यद्वक्ता महामानव नहीं थे, वे हमारे समान ही भावना रखने वाले साधारण मनुष्य थे, परंतु परमेश्वर का संदेश सुनाने के कारण उनका संदेश परमेश्वर का अचूक और प्रेरित वचन है। उनके संदेश की पुष्टि नए नियम के लेखकों ने की है। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 10 और 11 पद में पत्रस लिखता है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पैसखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। तब हम दूसरा पत्रस की पुस्तक 1 अध्याय उसके 15 से 20 पद में भी पढ़ते हैं, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का सितारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मेरे प्रियो, विलियम कापोर ने कहा था, भविष्यवाणी की वीणा मधुर है, नाश्वर स्पर्श द्वारा न चूकने के लिए अति मधुर है। ध्यान दीजिए कि अधिकांश भविष्यद्वक्ता गुमनामी में विलोप हो गए। उन्होंने अपने भविष्यवाणियों में अपने व्यक्तित्व को प्रकट नहीं किया, अर्थात नहीं होने दिया था। यर्मिया और होशे अलग हैं, जिनके बारे में हम उनकी पुस्तकों के अध्ययन में देखेंगे। यशाया अपने विषय बहुत कम जानकारी देता है। उसके जीवन और सेवा के यदा कदा ही संदर्भ हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके एक अध्याय के एक पद में वह अपने जीवन का समय दर्शाता है, उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के राज्य काल। ये सब यहूदा के राज्य थे। यशाया 6 में वह अपनी बुलाहट का उल्लेख करता है। यशाया का सेवा काल यहूदा का अनंत अंधकार का समय नहीं था। उज्जियाह और हिजकिय्याह विवेकशील राजा थे जिन्होंने यहोवा परमेश्वर का मुख खोजा था, परंतु उत्तर में अश्शूरों के संकट के कारण उनका राज्य काल अंधकार में था। उत्तरी राज्य इसराइल बंधुआई में जा चुका था। हम देखते हैं कि यशाया 36 अध्याय से 39 अध्याय में यशाया की सेवा का ऐतिहासिक अध्याय है। उस समय अश्शूरों की सेना ने यरूशलेम को घेर रखा था। इन व्यक्तिगत अंशों की अपेक्षा यशाया पाशुर में ही रहता है, क्योंकि वह किसी और के आगमन की ओर संकेत करता है जो इस जगत की ज्योति है। कुछ विचारकों का मानना है कि यशाया दाऊद के राजसी वंश से था, परंतु इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है, अतः यह एक कल्पना ही है। इसी प्रकार कहा जाता है कि इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 37 पद में आरे से काटा जाने वाला भविष्यद्वक्ता यशाया ही था। यह सच हो या न हो, मुक्त विचारकों ने उसे इस पुस्तक का लेखक होने से अवश्य काट कर अलग कर दिया है। उन्होंने एक भयानक कहानी बनाई है कि यशाया अनेक थे। उनके विचार में यह पुस्तक एक गुप्त लेखक द्वितीय यशाया द्वारा लिखी गई थी और फिर तृतीय यशाया के द्वारा। यह पुस्तक इस प्रकार के विभाजन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि नया नियम पुस्तक के सब अंशों से संदर्भ देता है और एक ही यशाया की चर्चा करता है। इतिहास भी एक ही यशाया का उल्लेख करता है, दो या तीन का नहीं। एक व्यक्ति ने मृत सागर के कुंडली ग्रंथों का भरपूर अध्ययन किया है, कहता है कि यशाया पर विद्वान सबसे अधिक खोज कार्य करते हैं। यशाया का अधिकांश भाग अछूता है और एक ही यशाया का उल्लेख है। यह बड़ी रोचक बात है कि परमेश्वर ने एक चरवाहे बालक को कुमरान मृत सागर गुफाओं में प्रवेश करने दिया, जहां उसने मिट्टी के पात्र में कुंडली ग्रंथ निकाला। यह कुंडली ग्रंथ आलोचकों को विफल कर देता है। प्रभु इन आलोचकों को संभाल लेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं कि द्वितीय यशाया और तृतीय यशाया की कल्पना कैसी हास्यास्पद है। मान लीजिए कि 1000 वर्ष बाद पुरातत्व वैज्ञानिक किसी जगह खुदाई करे, एक दल अमेरिका में और एक दल यूरोप में खुदाई करता है, और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का सेनानायक आइजनहावर 1 था और 1952 से 56 का अमेरिका का राष्ट्रपति आइजनहावर कोई और था। अब एक और आइजनहावर का पता चला जिसको दिल का दौरा पड़ा था। मेरा यह उदाहरण आपको विचित्र सा अवश्य लगेगा, परंतु जब मैं आलोचकों को तीन अलग अलग यशाया की बात कहते हुए सुनता हूं, तब मुझे भी ऐसा ही विचित्र सा लगता है। जिस प्रकार ये तीन आइजनहावर एक ही था, उसी प्रकार तीनों यशाया भी एक ही था। यशाया की भविष्यवाणी संपूर्ण बाइबल की व्यवस्था के अनुरूप है, जो निम्नलिखित तुलना में देखी जा सकती है। आइए हम देखेंगे बाइबल जिसमें 66 पुस्तकें हैं और यशाया की पुस्तक में 66 अध्याय हैं और बाइबल में 39 पुराने नियम की पुस्तकें हैं और यशाया में 39 अध्याय परमेश्वर की व्यवस्था है और 27 पुस्तकें बाइबल में नया नियम है और यशाया में 27 अध्याय परमेश्वर का अनुग्रह और उद्धार है। मेरे प्रियो, नए नियम में यशाया के सीधे 66 संदर्भ हैं। कुछ ने तो 85 संदर्भ और संकेत नए नियम में देखे हैं। नए नियम की 27 पुस्तकों में से 20 पुस्तकों में सीधे संदर्भ हैं। यशाया नए नियम से वैसे ही बुना हुआ है जैसे किसी सुंदर नमूने में लाल रंग का धागा हो। नए नियम में यशाया स्पष्ट और समझ में आने योग्य है। यशाया नए नियम की चट्टान में तराशा गया है। इसका साधन पवित्र आत्मा है। नए नियम में मसीह यीशु के बारे में चर्चा करने वाले अंशों में यशाया ही विवरण एवं विस्तार हेतु संदर्भित किया गया है। अध्याय 36 से 39 का ऐतिहासिक मध्य भाग भविष्यवाणी का ऊंचा स्तर त्याग कर इतिहास का विवरण देता है। यहां तक कि भाषा भी भिन्न हो गई है। यह भाग कविता की अपेक्षा गद का रूप है। अंतिम मुख्य भाग अध्याय 40 से 66 फिर से कविता रूप को अपनाता है, परंतु प्रथम भाग का विपरीत विन्यास है। प्रथम भाग में परमेश्वर का न्याय और धार्मिकता का राज्य है, परंतु इस अंतिम भाग में परमेश्वर का अनुग्रह, कष्ट वहन और आने वाली महिमा का उल्लेख है। शांति दो शांति शैली को लय प्रदान करता है। यही भाग के कारण आलोचकों ने द्वितीय यशाया की कल्पना की थी। विषय में परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि लेखक बदल गया है। यह एक रोचक बात है कि 1300 वर्षों तक द्वितीय यशाया का कहीं नाम नहीं था। पहला योना की पत्री 1 अध्याय उसके 23 पद में योना इस भाग को यशाया द्वारा लिखा गया कहता है। लुकर की सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 से 21 में हमारे प्रभु यीशु ने इसे यशाया के वचन कहा। प्रेरितों के काम 8 अध्याय में हम देखते हैं कि फिलिपुस ने यशाया के द्वारा ही कूश देश के अधिकारी को प्रभु यीशु का बोध करवाया था। ऐसे अनेक संदर्भ यशाया को ही इस पुस्तक का लेखक सिद्ध करते हैं। मेरे मित्रों, यशाया ने अनेक स्थानीय घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। अशुरों की सेना ने जब यरूशलेम को घेर लिया था, तब यशाया ने अति साहसी भविष्यवाणी की थी। यशाया की पुस्तक 37 अध्याय उसके 33 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा अशुर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। अध्याय 38 में हिजकिया के रोग से संबंधित उसकी भविष्यवाणी भी देखें। कुछ भविष्यवाणियां उसके जीवन काल से या जीवन काल में पूरी नहीं हुई थी, परंतु आज हम देखते हैं कि वे पूरी हो चुकी हैं। उदाहरण स्वरूप बेबीलोन के विषय उसकी भविष्यवाणी 13 अध्याय उसके 19 से 22 पद में हम पाते हैं, बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। वह फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करने पाएगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहां शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहां नाचेंगे। उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उसके विनाश का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। मेरे मित्रों, बेबीलोन के संबंध में अन्य भविष्यवाणियां अध्याय 47 में हैं। बेबीलोन की खुदाइयों में इस भविष्यवाणी की शब्दशः पूर्ति प्रकट होती है। बेबीलोन की शहरपनाह 75 किलोमीटर से अधिक खोदी जा चुकी है। इस महान खुदाई की संस्कृति आज भी प्रभावशाली है, परंतु यशाया की लिखित भविष्यवाणी के अनुसार वह आज मिट्टी में मिल गई है। यह आज अनेक उदाहरणों में से एक है जिन्हें हम संदर्भित कर सकते हैं। शेष भविष्यवाणियां हम अपने अध्ययन में देखेंगे। मेरे मित्रों, नया नियम प्रभु यीशु को अपना विषय बनाता है और इसी बल से यशाया प्रभु यीशु को अपना विषय बनाता है। यशाया को 5वां सुसमाचार लेखक और यशाया की पुस्तक को 5वां सुसमाचार कहा गया है। प्रभु यीशु का कुमारी से जन्म, उसका चरित्र, उसका जीवन, उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान और उसका फिर से आना आदि सब यशाया की पुस्तक में स्पष्ट एवं निर्विष्ट है। इससे स्पष्ट होता है कि यशाया सचमुच में सच्चा भविष्यद्वक्ता था। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। यह हमारा पृष्ठभूमि है। जिसको हमने यशाया के पुस्तक में देखा है। आने वाले अध्ययन में हम उसको और अधिक अधिकाई से जानेंगे कि यशाया हमें किन बातों के द्वारा बताना चाहता है कि प्रभु यीशु कुमारी से जन्मा और उसका चरित्र, उसका जीवन और उनकी सारी बातें। तो आप अगले अध्ययन को सुनना ना भूलें। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तेरे